युद्धरत कलिसिया, पहला तिमुथियुस 6:11-21। यदि आपके पास बाइबल हो, और मैं आशा करता हूं कि होगी, तो जबकि हम पौलुस द्वारा तिमुथियुस को लिखे पहले पत्र की यात्रा के अंत की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पहला तिमुथियुस 6 निकालें। हम पौलुस को झूठे शिक्षकों, प्रार्थना के महत्व, कलिसिया के अगुओं के निमित्त निर्देश, विधवाओं और पुरनियों के निमित्त निर्देश, सेवकों और स्वामियों के निमित्त निर्देशों के मुद्दे को संबोधित करते देख चुके हैं। वह हमें भौतिकवाद के खतरों के प्रति सचेत कर चुका है। इसके बाद इस पत्र के अंत में पहुंचते पहुंचते आप सोचने लगते हैं, अपनी बात को चरम पर लाते समय, उससे निष्कर्ष निकालते समय, वह कौन सी बात है जो पौलुस तिमुथियुस को बताना चाहता है, उसके और कलीसिया के पास छोड़ना चाहता है। तो इन बातों में कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण है? ये रहे उसके लिखे वे शब्द, पहला तिमुथियुस 6:11। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, या आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। हे तिमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। वैश्विक सच्चाई को पहचाने। हम आत्मिक युद्ध में हैं। इस तरह मेरे विचार से हमने जो अभी पढ़ा है, उसमें एक प्रमुख कथन है, जो कि पौलुस के तिमुथियुस को दिए अंतिम आदेश के संपूर्ण सार को व्यक्त करता है। यह कथन 12वें पद में है। आप चाहे तो उसे रेखांकित कर लें, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इसी भाषा का प्रयोग पौलुस ने पहले अध्याय का अंत करते समय किया था, जब वह कहता है कि अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उससे अच्छे विवेक को थामे रहे। इस तरह ऐसा लगता है कि मानो वह पुस्तकों का अंत कर रहा है। पहले अध्याय के अंत में और फिर 6वें अध्याय के अंत में वह तिमुथियुस को कह रहा है कि तिमुथियुस, तुम युद्ध में हो, तुम ऐसी लड़ाई में हो जिसमें सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि तुम अपने विश्वास को थामे रह सको। मैं चाहता हूं कि आज की सुबह हम सबको भी इसी बात का एहसास हो। मैं चाहता हूं हम सब इस विश्वव्यापी सच्चाई को जानें, आप एक आत्मिक युद्ध में लगे हैं। हम सब एक साथ एक आत्मिक युद्ध में शामिल हैं, और इसमें विश्व का हर एक जन शामिल है। इस बात पर बाइबल पूरी तरह स्पष्ट है। हम युद्ध के समय में हैं, शांति के समय में नहीं। वचन में हर जगह यही बात लिखी है। हमारे पास हर एक पद को पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन जरा देखें कि इब्रानियों 12:4 कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। पहला पत्रस 2:11 कहता है, जो आत्मा से युद्ध करती हैं। यहूदा 3 हमारे विश्वास के संघर्ष की बात कहता है। इसकी अगली ही पुस्तक में, जिसमें पौलुस तिमुथियुस को पत्र लिखता है, पौलुस कहता है, हम सिपाही हैं। कुरिन्थियों को लिखे दूसरे पत्र में पौलुस बताता है कि एक मसीह होने के नाते हमारे पास लड़ने के हथियार हैं। इफिसियों 6:12 में पौलुस सबसे स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सच्चाई यह है कि इस कमरे में बैठा हर एक व्यक्ति एक आत्मिक युद्ध में है। यह बात समझ लें, इसे जान लें, इस बात का एहसास करें। हम सभी के जीवनों में इसकी अभिव्यक्ति अलग तरह से होती है, लेकिन हम सभी के जीवनों में ऐसी बातें हैं जो हमारे विश्वास पर हमला कर रही हैं। आप में से कुछ लोग अपनी शादी को लेकर युद्ध में हैं। आप में से कुछ लोग एक माता पिता के रूप में अपने बच्चों को लेकर युद्ध में हैं। पवित्रता को लेकर इस कमरे में मौजूद हर दिमाग और जीवन एक निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आप में से कुछ एक लोगों का दिमाग कामुक विचारों की युद्ध भूमि बना हुआ है और वहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है। अविवाहितों, आप में से कुछ लोग गंभीर संबंध में हैं और हर दिन, हर सप्ताह आप पवित्रता और निर्मलता को लेकर युद्ध करते हैं। मेरे शादीशुदा भाइयों और मेरी बहनों, आप में से कुछ एक लोग इस अवैध प्रेम संबंध के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं जिसकी ओर आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस संदेश को सुन रहे लोगों में चिंता और संदेह और निराशा का युद्ध चल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन सभी बातों या उन बातों से भी जूझ रहे हों जिनका उल्लेख हमने यहाँ पर नहीं किया है। भौतिकवाद के लिए चारों ओर युद्ध चल रहा है और यह बात आपकी आत्मा को कचोट रही है। सच्चाई यह है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप दफ्तर में हैं, चाहे आप अपने परिसर में हैं, चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप किसी के साथ हैं, एक आत्मिक युद्ध चलता रहता है। हो सकता है आप सोचें कि खैर, मैं तो एक मसीही भी नहीं हूं, तो यह बात मुझ पर लागू नहीं होती। यह बात बिल्कुल लागू होती है। इस समय आपकी आत्मा के लिए एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। आत्मिक युद्ध में हमारा विरोधी बहुत विकट है। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और इस आत्मिक युद्ध में हमारा विरोधी बहुत विकट है। स्वर्गिक क्षेत्र में दुष्टों की आत्मिक सेनाएं, जो परमेश्वर की महिमा को मलिन करने, परमेश्वर के सुसमाचार को भ्रष्ट करने और परमेश्वर के लोगों का नाश करने की इच्छा रखती हैं। एक विरोधी है जो आपकी शादी को तबाह करना चाहता है। एक विरोधी है जो आपके संबंधों का नाश करना चाहता है। एक विरोधी है जो आपकी पवित्रता को खत्म करना चाहता है और हर कीमत पर आपकी निष्ठा पर हमला करना चाहता है, ताकि परमेश्वर की भलाई और महिमा को ना जान सकें और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार ना कर सकें। पहला पत्रस 5:8 कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह आपका शत्रु है, वह परमेश्वर नहीं है। तो भी आप स्वयं को कितना ही बलशाली और चालाक समझें, लेकिन अकेले तो आप उसके आगे कहीं नहीं ठहरते। इस आत्मिक युद्ध का दायरा सर्वव्यापक है। इस आत्मिक युद्ध से बचना असंभव है। इस आत्मिक युद्ध का दायरा सर्वव्यापक है। इसका दायरा ब्रह्मांड तक फैला है। इसमें हर भाषा, हर व्यक्ति, हर राष्ट्र, हर जाति, हर परिवार और हर एक जीवन शामिल है, जिसका अर्थ हुआ कि इस आत्मिक युद्ध से बचना असंभव है। आपके पास इस आत्मिक युद्ध में शामिल होने या ना होने का विकल्प नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि शैतान की अनदेखी करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि आप इस युद्ध से बचने का प्रयास करेंगे और ऐसा अभिनय करेंगे कि मानो युद्ध या संघर्ष ही ना हो, तो आप इसमें टिक नहीं पाएंगे। आप लड़खड़ाएंगे, आप डगमगाएंगे और आप शत्रु द्वारा परास्त किए जाएंगे। आत्मिक भगौड़ापन केवल आत्मिक पराजय लेकर आता है। इस आत्मिक युद्ध में अनंतता की बाजी लगी है। यह खतरनाक है क्योंकि इस आत्मिक युद्ध में अनंतता की बाजी लगी है। इसे सुने, इस युद्ध में नुकसान केवल एक हाथ या पैर या आंख या फिर जीवन का नहीं होता। इस आत्मिक युद्ध में नुकसान का अर्थ होता है सब कुछ खो देना, यहां तक कि अपनी आत्मा भी, और फिर आत्माओं को अनंत यातना के लिए नरक में फेंक दिया जाता है। मैं इसे अधिक नाटकीय नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन यही सच्चाई है। जरा इस पर विचार करें। इस संसार का एक परमेश्वर है जिसकी इच्छा है कि हर व्यक्ति बचाया जाए। फिर इस संसार का भी एक परमेश्वर है जो चाहता है कि हर एक व्यक्ति नरक की आग में जले। यह ब्रह्मांडीय युद्ध है और आप व मैं ठीक इसके बीचों बीच हैं। हम में से हर एक के जीवन पर अनंतता तक और दूसरों के जीवन पर अनंतता तक इस बात के परिणाम होंगे कि हम इस युद्ध को कैसे लड़ते हैं और कैसे इस संग्राम का सामना करते हैं। अच्छी लड़ाई लड़ो, इसलिए इसे महसूस करो। पौलुस कहता है, तिमोथियुस, एक अच्छी लड़ाई लड़। अब आप सोचते हैं क्या अच्छी लड़ाई भी कोई चीज होती है? हाँ, पौलुस कहता है कि होती है। अच्छी लड़ाई नाम की चीज होती है। जब आप अनंत जीवन के लिए लड़ते हैं, जब आप आनंद और शांति के लिए लड़ते हैं, जब आप हियाव और आशा के लिए लड़ते हैं, तो आप एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ऐसा आप केवल अपने लिए नहीं करते, वरन दूसरों के लिए करते हैं। जब आप जीवित रहने और सुसमाचार के प्रचार के लिए लड़ते हैं, ताकि दूसरे भी उस अनंत यातना से बचकर अनंत जीवन को पाएं, तो आप एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। यह एक अच्छी लड़ाई है। मैं अपने जीवन में बीती कल की सुबह के बारे में सोच रहा हूं। मैं अपने विश्वास के परिवार के दो भाइयों के बारे में सोच रहा हूं, और काफी समय से वे मुझे कसरत के लिए जिम में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। कल मित्र दिवस था, इसलिए उन्होंने मुझे इसे मनाने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, यह मित्र दिवस के नाम से मेरे मन में बहुत सुहाने विचार आते हैं। मुझे दोस्तों के मुस्कुराते चेहरे, हंसी मजाक और मौज करने के विचार आते हैं। मित्र दिवस बहुत अच्छा दिन होता है, लेकिन यह मित्र दिवस ऐसा नहीं था। मैं कल सुबह उनसे मिलने गया। हमें बताया कि हम लोग दोस्तों की तरह 12 मिनट की कसरत साथ में करेंगे। 12 मिनट? शायद। बस 12 मिनट होते कितने हैं? तो पहले हम शरीर को गर्माने के लिए हल्की फुल्की कसरत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कसरत के ख़त्म होते होते मैं बुरी तरह थक कर चूर हो गया था, और फिर शुरू हुए मेरे जीवन के सबसे लंबे 12 मिनट। हमने दौड़ लगाई, गेंद उछालने वाली कसरत की, उकड़ू हुए और हाथों की कसरत की। 12 मिनट बाद मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मेरे पैर फटने की कगार पर थे। मैं वहाँ पड़ा हुआ था और आसपास से गुजरते हुए लोगों से पूछ रहा था, इसकी हालत सही है क्या? नहीं, मैंने मन में सोचा, नहीं, मेरी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी हालत बहुत खस्ता है। इस सुबह भी मेरी हालत खस्ता ही है। मैं अपने हाथों को कंधे से ऊपर नहीं उठा सकता। यहाँ बैठे बैठे अच्छा लग रहा है, लेकिन डरता हूँ कि अभी कुछ मिनटों में जब मुझे उठकर खड़े होना पड़ेगा, तब मेरा क्या होगा। ब्रुक हिल्स के कुछ लोग ये सब देख रहे थे, और जब मैं वहाँ बिल्कुल बेहाल होकर पड़ा हुआ था, तब एक बच्चे ने जरूरत करके मेरी तरफ देखा और कहा, पास्टर डेविड, आप उपदेश तो अच्छा देते हैं, लेकिन दौड़ने में आप कुछ खास नहीं हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अब मैं उस अनुभव की ओर देखता हूँ तो सोचता हूँ वह अच्छा अनुभव था। वह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन एक अच्छी लड़ाई थी, और मैं वापस जाकर उस अच्छी लड़ाई को और लड़ूंगा। इस तरह ये रही वे बातें जो मैं चाहता हूँ कि हम करें। मैं चाहता हूँ कि इस समय आपके मन और जीवन में जो लड़ाई चल रही है, आप उसके विषय में सोचें। इस तरह हम सब एक आत्मिक युद्ध में शामिल हैं। हम सभी के जीवनों में हम अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हो सकता है आप इनमें से किसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हों। शायद यह आपके विवाह को लेकर है, या पालन पोषण अथवा संबंधों को लेकर, या फिर आपके विचारों या भावनाओं को लेकर। तो कहाँ है वह बिंदु? मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन के बारे में सोचें। जहाँ आप बैठे हैं, ठीक वहीं पर आपके जीवन में वे कौन सा बिंदु अथवा कौन से बिंदु हैं जहाँ यह युद्ध की भीषणता सबसे अधिक है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने मन में सबसे आगे रखें, और मैं चाहता हूँ कि वचन वहाँ कार्य करे। मैं आपको सांत्वना देना चाहता हूँ। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई को अच्छे से लड़ें। पौलुस क्या कहता है? कि वह अच्छी कुश्ती लड़ को आदेशात्मक शब्दों के साथ कहता है, ताकि वह तिमुथियुस को यह बता सके कि उसे यह लड़ाई किस प्रकार लड़नी है। इसलिए उनमें से 5 बातों को मैंने आपके नोट्स में यहाँ सूचीबद्ध किया है, और मैं बस चाहता हूँ आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसे आप अपने मन में रखें और इन पदों को सीधा अपनी गोद में और उस आत्मिक युद्ध के बीचों बीच आने दें जिनमें आप स्वयं को पाते हैं। जो बातें आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, उनसे दूर भागें। यह रही वह बात जो पौलुस सबसे पहले कहता है। 11वें पद में वह कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। तो आप अपने आसपास चल रहे इस आत्मिक युद्ध को कैसे लड़ते हैं? पहली बात, आप उन बातों से दूर भागें जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। आप दूर भागने के द्वारा लड़ते हैं। अब आप सोचते होंगे, इसे तो लड़ाई लड़ना नहीं कहते। यह तो लड़ाई से दूर भागना है। भाइयों और बहनों, कई बार भाग जाना ही जीवन के लिए लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अगर रास्ते में 125 किलो का कोई पहलवान मुझे मसलने की ताक में खड़ा है, तो ऐसे में उसके साथ हाथापाई करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वहां से भाग जाना ही अपने जीवन को बचाने की सबसे सही रणनीति होगी। इसलिए पौलुस कहता है, इन सब बातों से दूर भाग। इन बातों से उसका क्या तात्पर्य है? वह भौतिकवाद और झगड़ना और निंदा करना और स्वार्थ के बारे में कह रहा है, जिनके विषय में उसने 6वें अध्याय में इन पदों के ठीक पहले कहा था। वह कहता है, इन पापमय कामों से दूर भाग, पाप की हर परीक्षा से दूर भाग, भाग, पाप के साथ आंख मिचौनी ना खेल, उससे दूर भाग, धोखा ना खा। पाप हमेशा धीमे से आता है, पाप हमेशा अचानक से आता है, बस एक झलक, बस एक विचार, बस एक चुंबन, बस एक और खरीद, बस एक मिनट, बस एक न जाने क्या क्या। नहीं, भाग, तो भी इसे देखें, ये करने तक सीमित नहीं होता। पौलुस कहता है, पापमयी इच्छाओं से भाग, इन बातों से भाग। 9वें और 10वें पद में उसने जो कहा था उस पर वापस चलें। वह धनवान होने की इच्छा, पैसों के प्रेम और परमेश्वर से दूर ले जाने वाली लालसाओं के बारे में कह रहा है। जब भी आपके मन में परमेश्वर से दूर ले जाने वाली लालसाएं जागें, भागें, इसकी अनदेखी ना करें, इसे एक स्तर और गहरा ले जाएं। यह बहुत बड़ी बात है। विश्वास की लड़ाई में हम केवल पापमय इच्छाओं और कामों से दूर नहीं भाग रहे हैं, आखिरकार हम पापमय विचारों से दूर भाग रहे हैं। जरा इस पर विचार करें। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ और विश्वास के केंद्र में भरोसा होता है। बाइबल यहाँ कह रही है कि परमेश्वर पर विश्वास करने की लड़ाई लड़। यह बहुत बड़ी बात है। जरा इस पर विचार करें। 6वें अध्याय में भौतिकवाद के विषय में पौलुस के कहने के बावजूद हम भौतिकवाद और चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं? पौलुस ने यह बात पूरी तरह साफ की है। पौलुस ने बताया कि भौतिकवाद और चीज़ों के पीछे हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारा इस बात पर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर लाभ है। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे लिए केवल परमेश्वर का होना काफ़ी है। इसलिए हम अपने जीवन में पहले से बड़ी और बेहतर चीज़ों से अधिक अधिक भरते जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनसे संतुष्टि मिलेगी। यदि हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा कर लें तो इन सब चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए भौतिकवाद का सामना परमेश्वर पर अपने विश्वास के साथ करो। यही वह स्थान है जहां हमें इस बात का एहसास होता है कि पाप के साथ हमारे संघर्ष के मूल में विश्वास करने का संघर्ष है। इस पर विचार करें। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आप ऐसा करने में विश्वास करते हैं कि यह आपके लिए बेहतर होगा। आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आप उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते जो कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सत्य बोलो। आप व्यभिचार में क्यों पड़ जाते हैं? आप व्यभिचार में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि आपके लिए पवित्र रहना अच्छा और सबसे बेहतर है। आप सोचते हैं कि व्यभिचार में अधिक आनंद है, इसलिए आप परमेश्वर पर अपना विश्वास रखने के द्वारा इसके विरुद्ध लड़ते हैं। देखिए, परमेश्वर जानता है वह क्या कह रहा है। आप चिंता या निराशा या संदेह के साथ होने वाले संघर्षों के बारे में सोचें। ये सभी परमेश्वर पर विश्वास करने के संघर्ष हैं। आपको चिंता तभी सताती है जब आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकता। निराशा तब आती है जब आपको इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर भला है। संदेह तब आता है जब आपको यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर सच्चा है। इसलिए विश्वास की इस लड़ाई में पापमय विचारों से दूर भागें। हर उस बात या चीज़ से दूर भागें जो परमेश्वर पर अविश्वास को जगाते हैं। यह बात साइड में लिखें, नोट्स में लिखी है। यह साइड में लिखी टिप्पणी है जो मैं विश्वास की लड़ाई में वचन का प्रयोग करने के महत्व की याद दिलाती है कि विश्वास की इस अच्छी लड़ाई में वचन ही हमारा प्रमुख हथियार है। जब आपको इस बात का विश्वास करने में कठिनाई हो कि परमेश्वर सचमुच आपके साथ है और आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आपको कोई दिखाई नहीं देता, तो आप इसका सामना कैसे करते हैं? आप यहोशू 1 और मत्ती 28 के साथ उसका सामना करते हैं। उसने कहा था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उस पर विश्वास करने वाला हूं। जब मुझे उसकी उपस्थिति महसूस ना हो तब भी मैं विश्वास करूंगा कि वह मेरे साथ है। विश्वास की लड़ाई को वचन के हथियार से लड़ें। आप अपने जीवन में जूझ रहे हैं, सारी चीजें बिखर रही हैं, आप सोचते हैं क्या परमेश्वर सचमुच नियंत्रण में है, क्या उसे मेरी परवाह है, क्या इससे मदद मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मेरे लिए कोई रास्ता बनाएगा। इसका सामना आप कैसे करेंगे? आप उसका सामना भजन संहिता 31:15 के साथ करेंगे जो कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है। अय्यूब 42, तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुक सकती। रोमियो 8:28, और अब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप विश्वास की लड़ाई को वचन के हथियार से लड़ते हैं। उसने कहा, मैं इस वचन पर विश्वास करूंगा। परमेश्वर की ओर ले जाने वाली भली बातों के पीछे जाएं। इसलिए परमेश्वर से दूर ले जाने वाली बुरी बातों से दूर भागो। अब आप केवल चीजों से दूर नहीं भागते हैं, आप कुछ चीजों की ओर भी भागते हैं। इसलिए परमेश्वर से दूर करने वाली बातों से दूर भागें और परमेश्वर की ओर ले जाने वाली बातों के पीछे जाएं। वह कहता है, इस बातों से दूर भाग और का पीछा कर। वह हमें ऐसी 6 बातों की सूची देता है जिसके पीछे हमें जाना है, और वे बातें हैं धर्म, भक्ति, विश्वास, धीरज, प्रेम और नम्रता। इसलिए पीछा करें, इन चीज़ों का पीछा करें, धर्मी सोच और जीवन शैली का पीछा करें, उसके पीछे जाएं, भक्तिपूर्ण विश्वास और भक्तिपूर्ण बर्ताव के पीछे जाएं। भक्ति, यह शब्द जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, पहला तिमुथियुस में पौलुस का मनपसंद शब्द है। परमेश्वर पर केंद्रित आस्था, परमेश्वर पर केंद्रित व्यवहार, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने जीवन को सबसे पहले और सबसे अधिक परमेश्वर से संतृप्त करें। अपने विश्वास की लड़ाई आप इस तरह लड़ते हैं, स्वयं को भक्ति और धार्मिकता से संतृप्त करें। इसके बाद वह कहता है कि विश्वास का पीछा कर, परमेश्वर में गहरे विश्वास का पीछा कर। विश्वास की लड़ाई को लड़ने के लिए हम विश्वास के पीछे जाते हैं। अपने आसपास होते संघर्षों और युद्ध के बीच विश्वास में उन्नति करें। यही वह स्थान है जहां हमें इस बात का एहसास होता है कि जीवन के सबसे विकट समय विश्वास को गहरा करते हैं। मेलकॉम मैगरिज ने कहा था, हालांकि ऐसी आशा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभवों को, विशेष रूप से विनाशकारी और दुखद प्रतीत होने वाले समय को, एक अलग सी संतुष्टि के साथ देखता हूँ। वास्तव में पूरी सच्चाई के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि अपने 75 साल के जीवन में मैंने जो कुछ भी सीखा है, जिसने भी मेरे अस्तित्व को प्रबुद्ध और विकसित किया है, वह खुशियों के नहीं वरन यातना के माध्यम से हुआ है। फिर चाहे मैं उसके पीछे गया था या वह मेरे पास आए थे। ये रोमियो 5 है। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसलिए अपने संघर्षों के बीच परमेश्वर और गहरा विश्वास मांगे, परमेश्वर पर गहरी आस्था के पीछे जाएं, इसके बाद परमेश्वर के लिए गहरे प्रेम का पीछा करें, विश्वास और प्रेम का पीछा करें, परमेश्वर के प्रति प्रेम का पीछा करें, अपने मनों का पोषण करें। अभी कुछ सप्ताह पहले ही मैं किसी चीज को लेकर जूझ रहा था, इसलिए मैं प्रभु के साथ अतिरिक्त और गहरा समय बिताता हूँ। मैं प्रार्थना करते हुए सचमुच किसी बात से जूझ रहा था, और उसी संघर्ष के समय परमेश्वर ने यूहन्ना 15:9 की ओर मेरी अगुवाई की। पूरे नए दृष्टिकोण के साथ मैं उन शब्दों पर पहुंचता हूँ जहाँ यीशु अपने चेलों से कहता है कि जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। वाह, जरा सोचिए तो कि जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम रखा, असीम प्रेम। पिता अपने पुत्र से अगाध प्रेम रखता है। इसके बाद वह कहता है कि इसलिए मुझ में बने रहो। बिल्कुल सही बात है, मैं और कहाँ जाऊँ। बिल्कुल आत्मिक रूप से विकट समय में भी इसे सोख लें कि जिस प्रकार पिता ने मसीह से प्रेम रखा वैसे ही मसीह ने आपसे प्रेम रखा है। इसलिए उसके प्रेम में रहो, उसके प्रेम में बने रहो। आप देखते हैं कि कैसे ये बातें लड़ाई के बीच में होती हैं। मैं बस यूहन्ना 15:9 को लेकर वहां अपने घुटनों के बल बैठ गया। बस परमेश्वर के प्रेम से सिक्त मेरा मन और परमेश्वर के लिए प्रेम से सिक्त मेरा मन। विश्वास की लड़ाई लड़ें, प्रेम का पीछा तो कर, लेकिन केवल परमेश्वर के प्रति ही नहीं वरन दूसरों के प्रति भी प्रेम रख। विश्वास की लड़ाई लड़ें, अपने विश्वास से कहें कि वह आपके पति से प्रेम रखे, आपकी पत्नी से प्रेम रखे, आपके पड़ोसी से प्रेम रखे, आपके शत्रु से प्रेम रखे और आपके सहकर्मी से प्रेम रखे। परमेश्वर के लिए पहले से अधिक प्रेम। विकट परिस्थितियों में धीरज का पीछा करें। धीरज का पीछा कर, पौलुस कहता है, सहनशीलता और दृढ़ता का पीछा करें। लगातार कठिन होती अंतहीन लगने वाली परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य का पीछा करें। हार ना माने। आप में से कुछ लोग एक अरसे से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको उसमें जूझते रहने का प्रोत्साहन दूंगा। हार ना माने। मत्ती 24:13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इब्रानियों 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रेम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। विकट परिस्थितियों के बीच धीरज का पीछा कर। अंत में विकट लोगों के प्रति नम्रता बरतें। बहुत अजीब बात है, अच्छी लड़ाई को नम्रता के साथ लड़ें। आप नम्र होकर कैसे लड़ सकते हैं? इसमें बहुत सामर्थ्य है, लेकिन यहां एक शांत सामर्थ्य है या एक विनम्र सामर्थ्य है। यह कठोर मन दुखाने वाले स्वर में नहीं वरन एक नम्र और दीन आचरण में दिखती है। यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जो हो सकता है कि आपके जीवन में होने वाली आत्मिक संघर्ष का कारण भी हो, एक अच्छी लड़ाई है। आप इन सब बातों को देखते हैं और जानते हैं कि इनके लिए लड़ना एक अच्छी बात है। हर मसीही इन बातों की चाहत रखता है, लेकिन इन चीजों की सूची देखने पर पता चलता है कि इनमें से कोई भी बात हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। मुझे पौलुस की अगली बात बहुत पसंद आती है कि हमें यह एहसास कराता है कि इन सभी बातों को मसीह में हमारे निमित्त मोल लिया जा चुका है। इसलिए 12वें पद में पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जो जीवन आपको दिया गया है उसका अनुभव करें। पौलुस कहता है, इन बातों से दूर भाग, इन बातों का पीछा कर और इसके बाद इन सब के बीच जो जीवन आपको दिया गया है उसका अनुभव लें। कितना रोचक पद है। पौलुस तिमुथियुस को अनंत जीवन पकड़ने को कहता है, लेकिन तिमुथियुस को तो मसीह में अनंत जीवन तभी दे दिया गया था जब मसीह ने उसके नाम को पुकारा था और उसने बहुत से गवाहों के सामने अपने विश्वास का अंगीकार किया था। तो भी वास्तविकता दरअसल यह है, आप जरा इस पर विचार करें, अपने जीवन में आप एक मसीही होने के नाते, मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति होने के नाते आप मसीह में हैं, आपके भीतर उसका जीवन है। तो भी अपने भीतर उसके जीवन की भरपूरी का अनुभव करने के लिए आपको हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। मैं और आप जानते हैं कि भविष्य में एक दिन आएगा जब हम पूरी तरह और संपूर्ण रीति से पाप रहित उस जीवन को जिएंगे जिसे मसीह ने हमारे निमित्त मोल लिया है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसार की सारी आत्मिक लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उस दिन के आने तक उस जीवन का अनुभव करना जिसे हमारे लिए मसीह ने मोल लिया है, हमारे लिए एक दैनिक संघर्ष व युद्ध है। इसलिए मैं हर मसीही से यह कहूंगा, जैसा कि पौलुस ने तिमुथियुस से कहा था, अपने जीवन में आत्मिक युद्ध लड़ते समय ये बातें याद रख। याद रखें कि उसने आपको नाम से बुलाया है, आप उससे जुड़े हैं, आप उसकी संतान हैं। इसे रेखांकित कर लें। आप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। मित्रों, ये एक अच्छी खबर है। आप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। उसने आपका नाम पुकारा है, आपने अपने विश्वास का अंगीकार किया है, आपने उसका पक्ष लिया है। मैलोरी के समान दिन के शुरुआती पहर में वह खड़ी हुई और बपतिस्मा लिया और गवाहों के सामने आपने अंगीकार किया है। पौलुस कहता है, तुम पाप के लिए मर चुके हो और मसीह में जीते हो, तुमने अपने विश्वास का अंगीकार किया है। इसलिए इसके प्रकाश में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति की ज्योति में जीवन जियो। पौलुस कहता है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है यह आज्ञा देता हूँ, जरा इस पर विचार करें कि इस युद्ध को लड़ते समय परमेश्वर जो कि आपका जीवन है आपके साथ है। आप अपना युद्ध सभी चीज़ों के सृष्टिकर्ता, सभी चीज़ों के संरक्षक परमेश्वर में और परमेश्वर के साथ होकर लड़ते हैं। वही एक है जो आपके साथ है और वह आपके पक्ष में है। मसीह का अंगीकार करने के कारण आप जानते हैं कि वह आपके साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति की ज्योति में जिए, मसीह की विश्वास योग्यता की दृष्टि में जिए। जब परमेश्वर के पुत्र का जीवन पुंतियुस पिलातुस के सामने प्रस्तुत था, तब यह जानते बूझते हुए कि उसके सामने मौत खड़ी है, पौलुस कहता है कि मसीह ने अच्छा अंगीकार किया। उसने आपकी ओर अपने राजित्व का अंगीकार किया जिसके कारण उसे मृत्यु दंड मिला। यही वह उद्धारकर्ता है जिसने आपके लिए जान दी है। जरा इसे देखें, वह उद्धारकर्ता जो आपके लिए मारा गया था आज आपके साथ युद्ध में खड़ा है। ओह, कितनी बढ़िया बात है। हमें किस बात का डर है? वह उद्धारकर्ता जो आपके लिए मारा गया था वही वह राजा भी है और जो जल्द ही आपको लेने आने वाला है। हम अपने विश्वास की लड़ाई, अपने प्रभु यीशु मसीह की झलक देखने की इच्छा से आकाश में नजरें गड़ाए हुए लड़ते हैं। हम बुरी बातों से दूर भागते हैं, हम अच्छी बातों के पीछे जाते हैं। इस बात को जानते, विश्वास करते और आशा करते हुए कि वह किसी भी समय वापस आ सकता है और किसी भी समय वापस आने वाला है। हम नहीं चाहते कि जिस पल वह लौटे उस पल हम उन बातों में उलझे रहें जिनसे वह हमें पहले ही मुक्ति दे चुका है। वह विश्वासियों के लिए वापस आ रहा है, ना कि विश्वासहीनों के लिए। चलिए लड़ाई लड़ें। इन सब उत्साहवर्धक बातों के बीच भी हम संघर्ष करते हैं और कमज़ोर महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। पौलुस के शब्दों की मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है। वह कभी भी परमेश्वर की स्तुति करने लग जाता है। प्रोत्साहन बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर की महानता के प्रति आदरपूर्ण भय रखते हुए जीवन जिए, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानयुग रहेगा, आमीन। मेरे भाई या बहन, क्या आप स्वयं को शक्तिहीन महसूस करते हैं? क्या आप शक्तिहीन महसूस करते हैं? यदि ऐसा है तो अपने सिर को उठाकर उसे देखें जो आपके साथ है, वह जो आपके पक्ष में है। वह अधिपति है, केवल वही अधिपति है। कैंसर अधिपति नहीं है, तलाक अधिपति नहीं है, समस्या अधिपति नहीं है, बैर अधिपति नहीं है, परीक्षा अधिपति नहीं है, निराशा अधिपति नहीं है। इन सब बातों पर केवल आपका परमेश्वर ही अधिपति है। वह उन सब पर राज्य करता है। उसका राज्य सर्वव्यापी है। उसका राज अजय है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कोई दूसरा राज्य लेश मात्र भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। वह अमर है। अमरता केवल परमेश्वर में है। जरा इस पर विचार करें। वह इतिहास से ऊपर है, वह समय से परे है, वह विनाशी है। भजन संहिता 90 कहता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक है। वह अगम्य है और अगम्य ज्योति में रहता है। ओह, कितनी महान तस्वीर है। परमेश्वर चकाचौंध करने वाली पवित्रता और निर्मलता और महिमा के वातावरण में रहता है। अगम्य और अचिंत्य, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। वह सोचे गए हर विचार और विचारी गई हर कल्पना से विशाल है। हम सब के लिए सीमाओं से कहीं परे है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। सारी शक्तियां उसी के पास हैं और वही सारी स्तुति के योग्य है। यही वह परमेश्वर है जो आपका जीवन है। जगत की कौन सी वस्तु आपसे वह जीवन छीन सकती है? कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर आपके जीवन में है तो कोई भी बात आपके आनंद को नहीं चुरा सकती और कुछ भी आपकी आशा नहीं छीन सकती। इसलिए उसे थामे रहें, उस जीवन को थामे रहें जो वह आपको देता है। उसे थामे रहें, उसे पकड़े रहें, उसका अनुभव करें। यह आपका है, वह आपका है। यह बातें इसे लड़े जाने योग्य एक अच्छी लड़ाई बनाती है। इसका औचित्य समझ में आता है। मैं अक्सर सोचता था पहला तिमुथियुस 6:16 में आमीन शब्द के साथ पत्र का अंत करना सही रहता। इससे पत्र को एक प्रभावशाली समापन मिलता। मैं अक्सर सोचता था कि पौलुस न जाने क्यों फिर से भौतिकवाद और धन के प्रयोग के मुद्दे पर लौटता है, लेकिन सोचने पर यह बात समझ में आने लगती है और आपको एहसास होता है कि पौलुस वास्तव में बस उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो उसने पहला तिमोथियुस 6:6 में कही थी कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। परमेश्वर में आपको लाभ है। भौतिक खजाने को दे दो, इसलिए आप भौतिक खजाने को देकर अपने विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। अपनी आशा परमेश्वर पर रखें, और जबकि प्रेम करने के लिए परमेश्वर है तो फिर पैसों से प्रेम क्यों करना? जब आप परमेश्वर की इच्छा रख सकते हैं तो धन की इच्छा क्यों रखना? वह हमारे निमित्त भली वस्तुएं देता है, इसलिए पूरी कृतज्ञता के साथ उस पिता से ग्रहण करें जो भले वरदानों को देता है। कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें, उनसे संतोष करें और सादा जीवन जिएं। यह उन बातों का पुनरावलोकन है जिनका हम पिछले कुछ सप्ताहों से अध्ययन कर रहे थे। यह जानते हुए कि परमेश्वर आपको मुक्त करता है, परमेश्वर में हम अपने आसपास की संस्कृति से अलग तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें और अधिक कहा सुनी करने व चीजें जमा करने की होड़ में लगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास परमेश्वर है, सादा जीवन जिए ताकि उदारता के साथ दूसरों को सहायता दे सको। इस बात के निमित्त परमेश्वर पर भरोसा रखें। लोगों, भाइयों और बहनों, दुनिया के सबसे अधिक समृद्धि में रहते हुए दूसरों के साथ बांटने की इच्छा व उदारता रखें। दूसरों को दे दें, परमेश्वर में संतोषी रहें, दूसरों को दें और ऐसा करते हुए अनंतता में फूले फलें। फिर वही बात, अपने उस भविष्य के लिए जमा करो जब आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह रही सच्चाई। भाइयों और बहनों, चलिए एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं। हम जब तक इस संस्कृति में हैं तब तक हम भौतिकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे, और पिछले 3 सप्ताह से पहला तिमोथियुस 6 पर किए गए अध्ययन के आधार पर मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इस युद्ध में हथियार ना डालना। यह सतत लड़ाई है। हर बार किसी विज्ञापन को देखने पर यह युद्ध भड़कता है। हर बार किसी दुकान के सामने से गुजरने पर यह युद्ध भड़कता है। यह एक ऐसा युद्ध है जो हर उस बार भड़कता है जब आप दूसरों की संपत्ति को देखते हैं। इस युद्ध को लड़ें, परमेश्वर में महान लाभ के लिए लड़ें। पहले से अधिक संपत्ति की ताक में रहने और उसकी इच्छा व लालसा करने से मुक्ति पाएं। इसके विरुद्ध लड़ने के लिए दूसरों को और अधिक उदारता से दें। इस युद्ध को कई तरीकों से लड़ा जा सकता है। यह एक दैनिक युद्ध है। मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहूँगा कि आप इस युद्ध में लड़ते रहें और हथियार ना डालें, क्योंकि इस शहर और सभी जगहों पर आत्माएं दाव पर लगी हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि भौतिक अर्थात धन संपत्ति के खजाने दे दो, अपनी थाती की रखवाली कर। अच्छी लड़ाई लड़ने के विषय में पौलुस अंतिम आदेश देता है और कहता है अपनी थाती की रखवाली कर। 20वें पद में आप पौलुस को इसका सार देते हुए सुन सकते हैं। वह कहता है, हे तिमोथियुस, कितने स्नेह व लाड़ और कितनी भावुकता से कहता है कि हे तिमोथियुस, इस थाती की रखवाली कर। यही इसी पद में विश्वास की लड़ाई का सार है। सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए इस लड़ाई को लड़ते हैं। हमने इस पूरे पत्र में पहला तिमोथियुस 1 से लेकर पहला तिमोथियुस 6 तक में यह बात देखी है। यह बात पूरे पत्र में प्रवाहित हो रही है। पौलुस ने कहा है कोई अन्य शिक्षाएं ना सिखाना, विश्वास पर टिके रहना, वचन को सिखाने में सक्षम अगुए नियुक्त करें, स्वयं को विश्वास के वचनों में प्रशिक्षित करें, स्वयं को इस वचन के सार्वजनिक पठन के लिए समर्पित करें, अपनी शिक्षाओं पर बारीकी से ध्यान दें, इन बातों की शिक्षा दें, विश्वास पर जमे रहकर विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ें। ये सारी बातें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? पौलुस कहता है सुसमाचार की रखवाली करो, सुसमाचार में डगमगाएं नहीं। सबसे पहले यह स्वयं हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने इस बात को बारंबार कहा है, लोग इस सत्य से भटक गए हैं। पहला तिमोथियुस 1 में उसने कहा उन्हें शैतान को सौंप दिया गया है। पहला तिमोथियुस 6 में स्वयं को छलनी बना लिया है जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। या 21वें पद में कितने विश्वास से भटक गए हैं। ओ कलीसिया में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसकी अवहेलना ना करें। यूं ना सोचें कि खैर मैं तो सुसमाचार से कभी नहीं भटकने वाला। आपको सुसमाचार से भटकाने के लिए आपको हर दिन परीक्षा में डाला जाएगा। ये सारी बातें पौलुस तिमुथियुस इफिसुस की कलीसिया के पास्टर से कह रहा है, जिसके साथ उसने सालों काम किया था और जो इन सभी बातों में विश्वास योग्य रहा था, और वह इसे ही बारंबार चेतावनी दे रहा है। विश्वास को थामे रहे, यह हम सब के लिए चेतावनी की घंटी की तरह है, और इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हम में ऐसा भी नहीं जो विश्वास में भटकने वाली परीक्षाओं से मुक्त हो। सुसमाचार को थामे रहने के लिए अंतिम श्वास तक लड़ो, चाहे वह श्वास कल आए या आज से 80 साल बाद, लड़ते रहें। हार ना माने तो लड़ें। स्वयं के लिए सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य ठहरें और दूसरों के लिए सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य ठहरें। अब मैं चाहता हूं कि आप दो विभिन्न स्तरों पर इसके विषय में सोचें। पहला, मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, उन लोगों के हित में सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए लड़ें जो कलीसिया से बाहर हैं। तो मैं यहां पर खोए हुए और नाश होते लोगों के विषय में सोच रहा हूं, वे लोग जो परमेश्वर से अलग हैं, अनंत नरक की ओर जाने वाले रास्ते पर अपने पापों में मर रहे हैं। यहां पर ऐसे लोग हैं जो इसी श्रेणी में आते हैं जो मसीह के अनुयायी नहीं हैं, जिनका यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हुआ है और उनके पापों की क्षमा नहीं मिली है। इस श्रेणी में वे लोग भी हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। इनमें वे लोग हैं जो आपके पड़ोस में हैं। इनमें वे लोग हैं जिनके साथ आप कॉलेज के प्रांगण में होते हैं, वे जिनके साथ आप कक्षा में पढ़ते हैं, जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो अनंत नरक में जाते हैं। इसे रेखांकित करें, विरोधी हमारे विरोध में लड़ाई लड़ रहा है और उसका एक स्पष्ट लक्ष्य है आपको इस सुसमाचार के साथ चुप करना। इसलिए भय के विरुद्ध लड़ें, लोगों की वाहवाही पाने और उनकी हामी की इच्छा के विरुद्ध लड़ें, प्रतिष्ठा के विरुद्ध लड़ें, घमंड के विरुद्ध लड़ें, सुसमाचार के प्रचार हेतु इन सब बातों के विरुद्ध लड़ें। आप उस पल के लिए सोचें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सुसमाचार बांटने लगे थे जो उससे पूरी तरह अनजान था। आत्मिक युद्ध लड़े जाने के समय परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके भीतर होता है। जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। आत्मिक युद्ध के लिए शक्ति मौजूद है। इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप इस युद्ध से कतराकर भाग नहीं सकते। दूसरों के निमित्त इस युद्ध को लड़ें, सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य ठहरने के लिए लड़ें। सुसमाचार को संचित ना करें, उसे सर्वत्र फैलाएं, इसके प्रचार हेतु लड़ें, एक आत्म केंद्रित व आत्म संतुष्ट मसीहत बनाने की परीक्षा में ना पड़ें, जो सुसमाचार का संचय सुसमाचार का उत्सव तो मनाते हैं लेकिन कभी उन लोगों के साथ नहीं बांटते जो नरक के रास्ते में पड़े हुए हैं। इसके विरुद्ध लड़ें, इसलिए उन लोगों के निमित्त लड़ें जो कलीसिया के बाहर हैं, और उसके बाद उन लोगों के निमित्त लड़ें जो कलीसिया के भीतर हैं। मैं बताता हूं कि इससे मेरा क्या तात्पर्य है। पश्चिमी यूरोप और पूरे संयुक्त राष्ट्र का भूदृश्य में कई सारी कलीसियाएं हैं जो कभी सुसमाचार का प्रचार करती थीं और वचन में मजबूती से टिकी थीं, लेकिन तब से तरह तरह के आज़ाद ख्याल धर्म विचारों में खो गई हैं, परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठा रही हैं, परमेश्वर की महिमा की भर्त्सना कर रही हैं, किसी तरह की स्थितियों में क्षीण हो रही हैं और परमेश्वर के वचन की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही हैं। आज इस धरती पर कलीसिया की सभा के नाम से जगह जगह लोग आदमी के विचारों को सुनने के लिए जमा होते हैं। परमेश्वर का वचन शायद ही कहीं मिलता है। एक समय था जब ये कलीसियाएं परमेश्वर के वचन में मजबूती से टिकी हुई थीं। इसलिए हमें भी सचेत हो जाना चाहिए भाइयों और बहनों, कि यदि हम भी वचन में मजबूती से टिके ना रहे तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। इसलिए उन लोगों के निमित्त जो कि हमारे पीछे आने वाले हैं, इस वचन को मजबूती से थामे रहें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं इस विश्वास से गिरने और सुसमाचार से दूर होने की परीक्षा से मुक्त नहीं हूँ। इसलिए यदि मैं ऐसा कुछ करता हूँ और आप अगर ऐसा कुछ होते देखें तो मुझे पास्टर ना रहने दें। कोई भी जिसने वचन को मजबूती से नहीं बांधा है उसे पास्टर ना बना रहने दें। लेकिन यदि मैं इस वचन के प्रति विश्वास योग्य भी बना रहूँ, यदि मैं वचन को मजबूती से थामे रहूँ, तो भी सच्चाई यह है कि एक दिन ऐसा होगा यदि यीशु तब तक न लौटा तो कि जब मैं पास्टर न रहूंगा और मेरे स्थान पर कोई और पास्टर होगा, सुनिश्चित करें कि वह भाई वचन को मजबूती से थामे रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे भी इस वचन को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि अपने दिनों में हमने इस वचन की अच्छी रखवाली की है। अपने बाद आने वाले लोगों को बैटन पकड़ाने में हम विश्वास योग्य ठहरे हैं, लेकिन अपने यदा कदा काट छांट या सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार नहीं, वरन हम जो वचन को हर स्थिति में थामे रहते हैं, चाहे फिर संस्कृति में इसका कितना ही बड़ा दाम क्यों ना चुकाना पड़े। इसलिए कलीसिया में दूसरे लोगों के निमित्त सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए लड़ें। सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के लिए लड़ते समय हम ऐसे लड़ते हैं जैसे कि परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हों। आप शायद सोचेंगे, मेरे भीतर वो सामर्थ कहाँ है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूं? इस स्थान के लिए मुझे पौलुस के वे अंतिम शब्द अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कहने के बाद उसने तिमुथियुस की ओर देखकर कहा, तुम पर अनुग्रह होता रहे। कुलुसियों 1:28-29 में पौलुस के शब्दों का प्रयोग करते हुए वह कहता है, तिमुथियुस, तुम सब इस बातों पर कार्य करते हो, लेकिन तुम मसीह की शक्ति के साथ कार्य करते हो और मसीह की सामर्थ तुम्हारे भीतर शक्तिशाली रीति से कार्य करती है। इस युद्धों को लड़ने के लिए आपको अनुग्रह की आवश्यकता होती है। यही वह स्थान है जहां मैं पहला तिमुथियुस की इस यात्रा में छोड़ना चाहूंगा। मैं हम सबको प्रोत्साहन के दो सरल लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों के साथ छोड़ना चाहूंगा। पहला, यह जान लें, हम कभी इस युद्ध में अकेले नहीं होते। अब स्पष्ट है कि हम इस बात को जानते हैं। पहला तिमुथियुस 6 में जिन बातों को हम सीख चुके हैं उनके आधार पर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम जानते हैं कि वह हमारे साथ है और हमारे निमित्त है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी जरा अलग नजरिए से देखें। पौलुस जब 21वें पद में कहता है कि तुम पर अनुग्रह होता रहे, उसमें एक रोचक बात है और वह है वह शब्द तुम, जो कि एक वचन में नहीं कहा गया है। यहां पर यह तुम शब्द बहुवचन शब्द है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शायद आपकी बाइबल में एक टिप्पणी भी हो जो आपको बाइबल के आधार पर देखने का संकेत करती हो। तुम के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द बहुवचन है, जो कि बहुत रोचक बात है। पौलुस ने जब इस पत्र को लिखने की शुरुआत की थी तब उसने कहा था, तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। उसने यह पत्र तिमुथियुस को लिखा था, लेकिन वह इसके अंत में पहुंचता है और वह कहता है तुम पर अनुग्रह होता रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अर्थात तुम तिमुथियुस तुम पर अनुग्रह होता रहे। इसमें तुम हे इफिसुस की कलीसिया, तिमुथियुस के साथ साथ तुम पर भी अनुग्रह होता रहे। इसलिए मैं जब भी हम सबसे कहता हूं कि इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं, तब स्पष्ट है कि इससे मेरा मतलब यही होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन साथ ही विश्वास की लड़ाई लड़ते समय केवल परमेश्वर ही आपके साथ नहीं है, वरन परमेश्वर के लोग भी आपके साथ हैं। इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं जो इस युद्ध में अकेला लगा है। संसार भर के लोग इस युद्ध में लगे हैं। आप युद्धों का सामना कर रहे हैं, मैं युद्धों का सामना कर रहा हूं। सप्ताह भर हम लोग तरह तरह के युद्धों का सामना करते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। यहां मैं आपको एक बार फिर से प्रोत्साहन देना चाहता हूं। यदि आप भाइयों और बहनों के किसी समूह में शामिल नहीं हैं जहां आप युद्ध के विरुद्ध एकजुट हो सकते हैं, तो आप ऐसे भाइयों और बहनों के किसी छोटे समूह में तुरंत शामिल हो जाइए जहां आप उनके साथ युद्ध के लिए एकजुट हो सकें, जो आपको जानते हैं, जो आपके संघर्षों को जानते हैं और आप उनके संघर्षों को जानते हैं। आप एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताते हैं और आप एक साथ युद्ध के लिए जीते हैं और एक दूसरे के साथ सुसमाचार बांटते हैं। सप्ताह भर कलीसिया की यही तस्वीर होनी चाहिए कि भाइयों और बहनों के छोटे समूह में हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताते हैं और एकजुट होकर इस युद्ध को साथ में लड़ रहे हैं। इसके बाद रविवार को हम एक मन होकर कलीसिया की सभा में आते हैं। भाइयों और बहनों, हम सिपाहियों की एक सेना हैं जो कह रही है, हम थक गए हैं लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। वह स्तुति और महिमा और आदर के योग्य है और वह युद्ध जीत चुका है, इसलिए हम उसमें आनंदित रहेंगे। जो बातें वह कहने वाला है उन्हें हम सुनेंगे। इसके बाद इस सप्ताह के युद्ध में हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बगल में खड़े होकर युद्ध करेंगे। पहला तिमोथियुस 6 कि जिस कलीसिया को आप देख रहे हैं उसकी भी यही तस्वीर है। तुम साथ मिलकर विश्वास की इस लड़ाई को अपने मध्य पूरे अनुग्रह के साथ लड़ो। हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव पाने का एक माध्यम होते हैं। इस तरह का युद्ध कलीसिया के गुमनाम लोगों या अलग अलग कलीसियाओं में भटकते रहने वाले लोगों के साथ नहीं लड़ा जाता। यह युद्ध तो आगे की पंक्ति में डटे रहने वाले भाइयों और बहनों के साथ एकजुट होकर लड़ा जाता है, और जो कहते हैं हमें एक मिशन पूरा करना है और एक साथ पीछा कर रहे हैं। इसलिए इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं। प्रोत्साहन का दूसरा शब्द है कि आत्मिक युद्ध के परिणामों को बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि यह युद्ध पहले से जीत लिया गया है, इसलिए यह मेज इसी का प्रतिनिधित्व करती है। बस कुछ ही पलों में हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। पाप के दंड को मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और वह कब्र में से जिलाया जा चुका है। उसने पाप और मृत्यु को पराजित किया है और उसने शैतान पर जय पाई है। शैतान एक हारा हुआ शत्रु है और उसका नाश कर दिया जाएगा। उसका नाश होगा ही, बिल्कुल पक्का है। इसका मतलब यह हुआ कि हम विश्वास की एक अच्छी लड़ाई लड़ते समय हम जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पहला यूहन्ना 4:4 का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यह युद्ध के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। जरा इस पर कुछ इस तरह से विचार करें। अप्रैल 9, 1965 की सुबह जनरल रॉबर्ट ई ली जनरल यूलिसिस एस ग्रांट के साथ संयुक्त राष्ट्र के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात करते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था, शांति की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन रोचक बात यह है जहां हम बैठते हैं उसके दक्षिण में मांटो मेगरी से मोबाइल तक युद्ध अभी तक लड़ा जा रहा है। हालांकि तकनीकी रूप से गृह युद्ध समाप्त हो चुका था, तब भी फोर्ट ब्लेकली की लड़ाई तब भी हुई। लड़ाई बिल्कुल असली थी, बंदूकें और उन पर लगे चाकू अब भी खतरनाक थे और मौत भी उतनी ही भयावह थी। युद्ध का निर्णय हो चुका था लेकिन लड़ाई अब भी जारी थी, लेकिन जल्द ही पूरी धरती पर संपूर्ण और अंतिम शांति फैल जाएगी। हालांकि यह कोई संपूर्ण तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरी बात को समझें। मेरे विचार से यह विश्वास की उस लड़ाई के अंश दिखाता है जिसमें हम स्वयं को पाते हैं। जय हो चुकी है, शैतान हराया जा चुका है, लेकिन दांव पर अब भी उन लोगों के जीवन लगे हैं जो अब भी लड़ाई में हैं। और जिस प्रकार अलाबामा के निचले प्रदेश में शांति स्थापना होने को थी, वैसे ही यीशु की जय को भी इस संसार में पूरी तरह लागू किया जाना अभी बाकी है। वह दिन आ रहा है, वह दिन आने को है जब यीशु आएगा और आकर अपनी जय को अंतिम बार और सदा के लिए स्थापित करेगा। बुराई जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तो हम विश्वास की लड़ाई में हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने और इसे अपने भीतर समाने दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस युद्ध में आप गुजर रहे हैं यह उसके प्रति आपके दृष्टिकोण को अभी के अभी बदल देगा। हम इस युद्ध को जय के लिए नहीं लड़ते, हम इसे जय के साथ लड़ते हैं। यह बात सब कुछ बदल देती है। उसने पाप, मृत्यु और कब्र पर जय पाई है, उसने शैतान पर जय पाई है। इसलिए आप इस सप्ताह एक हारे हुए शत्रु से लड़ रहे हैं। इसलिए उन बुराइयों से दूर भागो जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है। भली बातों का पीछा करो जो आपको परमेश्वर की ओर ले जाती है। जो जीवन उसने आपके लिए मोल लिया है उसका अनुभव करें। उसने आपके नाम को पुकारा है, आपने अपने विश्वास का अंगीकार किया है। उसकी उपस्थिति की ज्योति में रहें, आपके प्रति उसके विश्वास योग्यता के दृष्टिकोण से। मिशन की अग्रिम पंक्ति पर अपना जीवन समर्पित करते समय उसकी महानता के प्रति आदरपूर्ण भय में इस सुसमाचार की रखवाली करें, ताकि धरती के छोर तक उसकी महिमा जानी जाए। यह लड़ने के योग्य एक अच्छी लड़ाई है।